पृष्ठ संख्या 104, अध्याय 7, दिल्ली की अंतिम प्रतिभा। जब हमने दिल्ली की काव्य धारा की व्याख्या करते हुए अवध के क्षेत्र की गतिविधियों की चर्चा की थी, तो यह इसलिए नहीं था कि दिल्ली में काव्य जगत सूना और अंधेरा हो गया, नहीं, बल्कि हमें इतिहास की उस गति का आभास कराना था जो स्थितियों के बदलने पर कहीं की शोभा घटा देती है और साथ ही साथ कहीं के आकर्षण में विस्तार कर देती है। आपको स्मरण होगा कि 18वीं शताब्दी की दिल्ली की चर्चा करते हुए बार बार इस बात की ओर संकेत किया गया था कि भारत की यह महानगरी सहस्त्रों सम्राटों की राजधानी रह चुकी थी, परंतु जब इसकी शोभा समाप्त हो गई, दिन प्रतिदिन आर्थिक कठिनाइयां बढ़ने लगीं, तो उसके कवि और कलाकार दूसरे सुरक्षित स्थानों को चले जाने पर बाध्य हुए थे। शायद मीर ने दिल्ली को ही दिल बनाकर कहा था, दिल की वीरानी का क्या मजकूर है, ये नगर 100 मरतबा लूटा गया, मगर दिल्ली मिट मिट कर बसती और मर मर कर जीती रही। हर पतझड़ के बाद उसमें बहार आ जाती थी। कई दफा तो यह हुआ कि उसकी मिटती हुई शोभा उसकी उन्नति के दिनों की शोभा से अधिक आकर्षक प्रतीत हुई। उस समय भी जब दिल्ली के कवि अवध की ओर जा रहे थे, वहाँ कवियों की मधुर वाणी गूंज रही थी। हाँ, यह बात अवश्य कि लोगों की आंखें अवध पर जमी हुई थीं और ऐसा जान पड़ता था कि अब यहाँ अनंत सन्नाटा हो जाएगा, परंतु जैसे अस्थायी शांति के बाद तूफान आता है, उसी प्रकार दिल्ली में कविता के सोते फूट बहे और एक महान युग का प्रारंभ हुआ। इसका यह अर्थ नहीं है कि मरता हुआ मुगल राज संभल गया था, बल्कि सामंतवादी मुगल सभ्यता की सुंदरता इसी पतनशील युग में अपनी अंतिम बहार दिखा रही थी। जौक, मोमिन, जफर और गालिब जो उर्दू साहित्य के रत्नों में गिने जाते हैं, इसी युग के कवि थे। उन्होंने एक बार फिर बुझते हुए दीपक की शिखा तेज कर दी और उन परंपराओं को और अधिक प्रबल और व्यापक बना दिया जिन्हें मीर, सौदा और दर्द ने सहारा देकर आगे बढ़ाया था। दिल्ली के पुराने कवियों में एक कवि शाह नसीर थे जिन्होंने इसी युग में नाम पैदा किया, इसलिए उनका परिचय यहीं दिया जाता है। शाह नसीर दिल्ली के रहने वाले थे और बालपन से ही काव्य रचना करते थे। थोड़े ही दिनों में बहुत प्रसिद्ध हो गए और पृष्ठ संख्या 105, शाह आलम बादशाह के दरबार में उनकी पहुँच हो गई, जहाँ उनका बड़ा आदर होने लगा। जब राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण इसमें कमी हुई, तो उनको भी बाहर निकलना पड़ा। रोजगार की खोज में वह 2 दफ़ा लखनऊ और 4 दफ़ा हैदराबाद गए। जब पहली दफ़ा लखनऊ गए थे, तो वहाँ इंशा, मुशफ़ी और ज़ुर्रत की छेड़छाड़ चल रही थी। शाह नसीर ने भी उसमें भाग लिया और जब दूसरी दफ़ा वहाँ पहुँचे, तो नासिक का बोलबाला था, इनकी कुछ न चल सकी। हैदराबाद के दीवान चंदूलाल शादा ने, जो स्वयं उर्दू के कवि और कवियों के प्रेमी थे और उनकी सहायता करते थे, शाह नसीर को अपने पास बुला लिया। उनके हैदराबाद जाने के फलस्वरूप वहाँ उर्दू की कविता एक दफ़ा फिर बड़े उत्साह से हुई और उन्होंने बहुत से शिष्य एकत्र कर लिए। वहीं से उनका काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ और वहीं 1835 ईस्वी में देहांत हो गया। शाह नसीर की भाषा कठिन और शैली बनावटी है। उनके यहाँ अलंकारों की भरमार होती है। नई नई उपमाएं गढ़ने में वह सबसे आगे थे और कभी-कभी तो ये उपमाएं इतनी पेचदार होती थीं कि उनका समझना कठिन जान पड़ता है। कहा जाता है कि उन पर लखनऊ की काव्य रचना का प्रभाव पड़ा था, परंतु यह बात कुछ बहुत ठीक नहीं, क्योंकि आरंभ ही से उनकी कविता में वही रंग था। उनकी कल्पना शक्ति प्रबल थी, लेकिन उनके विचारों में कोई गहराई नहीं होती थी। अपने समय में वे बड़े कवियों में गिने जाते थे, परंतु आज उनकी शैली ऐसी बनावटी और उनकी रचनाएं ऐसी निस्सार जान पड़ती थी कि उन्हें ऐतिहासिक महत्व मात्र ही दिया जा सकता है। उनके शिष्यों में जौक सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। सच पूछा जाए तो इस युग का महत्व युग प्रवर्तक कवियों, विशेषकर गालिब, मोमिन और जौक पर निर्भर है। इनमें से गालिब को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। परंतु कुछ लोग मोमिन की उर्दू गज़लों पर मुग्ध हैं। एक आध जौक को भी सबसे बड़ा कवि मानते हैं। मोमिन का नाम मोमिन खां और पेशा हकीमी था। वह दिल्ली के एक उच्च परिवार में 1800 ईस्वी में पैदा हुए और वहीं शिक्षा प्राप्त की, जिसका आधार साहित्यिक और धार्मिक था। वह ज्योतिष, गणित और काव्य रचना में निपुण थे। उन्हें शतरंज से बहुत प्रेम था और संगीत कला से भी परिचित थे। एक खाते पीते परिवार से संबंध रखने के कारण उनके जीवन में भोग विलास की भी कमी ना थी, इसलिए उन्होंने अपनी कविता को पेट पालने का साधन नहीं बनाया। वे राज दरबार से दूर रहे और एक के अतिरिक्त किसी धनवान की प्रशंसा में कविताएं नहीं लिखीं। एक दफा पटियाला के महाराजा ने उनको एक हथनी भेंट की तो उनकी प्रशंसा में एक कसीदा अवश्य लिखा। कुछ कसीदे धार्मिक नेताओं की सराहना में भी लिखे। मोमिन ने श्रृंगार और प्रेम रस में डूबी हुई कुछ मसनवियों की रचना भी की है, जिनमें प्रेम कहानियाँ बड़ी भावुक तथा कभी कभी बड़े नग्न ढंग से बयान की गई हैं। कहा जाता है कि पृष्ठ संख्या 106, युवा अवस्था में मोमिन प्रेम तरंगों में खूब झूले, या उसी का प्रभाव है। अंत में वह धार्मिक जीवन बिताने लगे। 1851 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। मोमिन की रचनाओं में उनके उर्दू काव्य संग्रह के अतिरिक्त एक फारसी काव्य संग्रह और फारसी गद्य में एक पुस्तक मिलती है, परंतु मोमिन की गजलों ने ही उनको कवियों में उच्च स्थान दिलाया है। वह प्रेम और उससे संबंधित भावनाओं से भरी हुई हैं, और कहा जाता है कि उन्होंने इस सीमित क्षेत्र में भावनाओं का चित्रण जिन नए नए ढंगों से प्रस्तुत किया है, वह दूसरे कवि नहीं कर सके हैं। उनकी भावनाओं और विचारों में सच्चाई अवश्य है, परंतु गहराई नहीं है। एक दृष्टि से कविता में वह उस परंपरा का पालन करते हैं जिसे जुर्रत ने प्रचलित किया था। इसका अर्थ यह है कि प्रेम के संबंध में वह भी कहीं कहीं अश्लीलता की ओर झुके हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यह प्रेम भावना उनके लिए कामना पूर्ति की एक साधारण उपलब्धि है, जिसमें उदारता और पवित्रता नहीं पाई जाती। कहा जाता है कि युवा अवस्था में उन्हें किसी वेश्या या ऐसी ही बाजारू स्त्री से प्रेम हो गया था, और उसी का प्रभाव उनकी गजलों पर मिलता है। मोमिन की भाषा अधिकतर फारसी निष्ठ है और अलंकारों के प्रयोग के कारण कठिन भी जान पड़ती है। उनकी शैली उर्दू के दूसरे कवियों से भिन्न है, क्योंकि वह मनोभावनाओं के साधारण प्रकटीकरण में कोई ऐसी जटिलता पैदा कर देते हैं कि उसका समझना दुष्कर हो जाता है, और कभी-कभी अपनी ओर से बहुत कुछ जोड़ने पर ही अर्थ निकलता है। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि उनकी गजलों में बड़ी सुंदरता और रस पाया जाता है। उदाहरण के लिए ये शेर देखिए, सहर से शाम तक तुझ बिन यही हालत रखी दिल ने, न मुझको चैन देता था न आप आराम लेता था, न मानूंगा नसीहत पर न सुनता मैं तो क्या करता, कि हर हर बात पर नासेह तुम्हारा नाम लेता था। कुछ कफ़स में इन दिनों लगता है जी, आशियां अपना हुआ बर्बाद क्या। जाने दे चारा अगर शबे हिजरा में मत बुला, वो क्यों शरीक हों मेरे हाले तबाह में। असर उनको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। पृष्ठ संख्या 107, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, बर्क का आसमान पर है दिमाग फूंक कर मेरे आशियाने को। ये हालत है तो क्या हासिल बयां से, कहूँ कुछ और कुछ निकले जबां से। वो आए हैं पशीमा लाश पर अब तुझे ऐ जिंदगी लाऊं कहाँ से। इस युग के प्रसिद्ध कवियों में शेख मुहम्मद इब्राहिम जौक भी थे। इनका जन्म 1789 ईस्वी में हुआ। वह एक गरीब सिपाही के पुत्र थे। जिस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तभी से शेर कहने का शौक पैदा हुआ। उन दिनों दिल्ली में शाह नसीर का बोलबाला था। जौक उन्हीं के शिष्य हो गए। शाह नसीर ने उनका नाम फैलते देखा तो उन्हें इस भय से टालना शुरू किया कि कहीं वह उनसे आगे न बढ़ जाएं। यह देखकर जौक उनसे अलग हो गए और थोड़े ही समय में उनका यश फैल गया। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर ने, जो उस समय मुगल बादशाह के उत्तराधिकारी थे, जौक को बुलाकर अपना उस्ताद बना लिया। उस समय जौक की उम्र केवल 20 वर्ष की थी। उसी आयु में उन्होंने बादशाह की प्रशंसा में जो कविता लिखी, उस पर उनको खकानी ए हिंद की उपाधि मिली। जब बहादुर शाह बादशाह हुए तो उन्होंने जौक को अपने राज्य का कविराय नियुक्त किया, और उनकी तनख्वाह, जो आरंभ में केवल 4 रुपये थी, 100 रुपये तक पहुंच गई। उन्होंने बहुत से कसीदे लिखे, जिन पर उनको गांव भी जागीर में मिले और अन्य पुरस्कार भी। 1854 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। दिल्ली के अनेक कवि उनके शिष्य थे, जैसे जफर, आज़ाद, दाग, अनवर, जहीर, मारूफ और बीरान। वह सदैव दिल्ली में ही रहे। महाराजा चंदू लाल ने उनको भी हैदराबाद आने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु वह नहीं गए। उनका प्रसिद्ध शेर है, गरचे है मुल्क के दकन में इन दिनों कद्रे सुखन, कौन जावे जौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। जौक का केवल एक ही उर्दू काव्य संग्रह मिलता है, जिसमें अधिकतर कसीदे और गजलें हैं। सौदा के पश्चात उनको उर्दू का सबसे बड़ा कसीदा लिखने वाला समझा जाता है। आलोचकों ने दोनों के कसीदों की तुलना भी की है, परंतु यह बात पृष्ठ संख्या 108, सभी स्वीकार करते हैं कि वह सौदा के बराबर नहीं पहुँचते। जौक के अधिकतर कसीदे बादशाहों की प्रशंसा में हैं, और चूंकि वह विद्वान और ज्ञानी थे, इसलिए उनके कसीदे उच्च कोटि के जान पड़ते हैं, परंतु केवल निर्बल बादशाहों की प्रशंसा का एक झूठा पोट होने के कारण उनमें अधिक शक्ति नहीं है। फारसी और उर्दू के कई बड़े बड़े कवियों ने कसीदे को ही काव्य रचना में निपुणता की कसौटी करार दिया है, परंतु भावनाओं की दृष्टि से कसीदा को काव्य का एक कृत्रिम रूप ही कहना उचित तथा युक्तिसंगत है। उसमें विचार से विचार पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसी स्थिति में शब्दों के प्रयोग पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। कसीदे में मनोभावनाओं का कोई महत्व प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि कसीदा लिखने वाले कवियों की गजल में भी भावुकता का वह जोश और हार्दिक व्याकुलता का वह चित्रण नहीं पाया जाता जो गजल के लिए आवश्यक है। कई आलोचकों ने जौक की भाषा की सरलता, उनके स्वभाव की नम्रता और उनकी प्रतिष्ठा को मिलाकर उन्हें गालिब से भी बड़ा कवि कहा है, परंतु यह विचार ठीक नहीं है। जौक की कला बहुत कुछ शब्द आडंबर और अलंकारों के प्रयोग पर निर्भर है। कविता का मूल तत्व, जिसका संबंध भावनाओं से है, उनके यहाँ बहुत कम है। उनकी कविता हृदय में धड़कन और गर्मी नहीं पैदा करती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उनकी समस्त काव्य रचना इसी ढंग की है। वे माने हुए उस्ताद थे, भाषा पर उनका बड़ा अधिकार था। जीवन की साधारण समस्याओं को नैतिक रूप देकर प्रस्तुत करते थे और काव्य शास्त्र के बहुत बड़े पंडित थे। उनकी अच्छी कविताएं देखी जाएं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके जीवन की सरलता और सहृदयता उनकी रचनाओं में पाई जाती है। उर्दू भाषा को उसके शुद्ध रूप में देखने वाले जौक की रचनाओं में अवश्य आनंद प्राप्त करेंगे। जौक के कुछ शेर ये हैं, कहते हैं आज जौक जहाँ से गुजर गया, हक मग फिरत करे अजब आजाद मर्द था, किसी बेकस को ऐ बेदादगर मारा तो क्या मारा, जो आप ही मर रहा हो उसको गर मारा तो क्या मारा, गया शैतान मारा एक सिजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सिजदे में सर मारा तो क्या मारा, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। पृष्ठ संख्या 109, आदमियत और शय में इल्म है कुछ और चीज, कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवा ही रहा, किया हमने सलाम ऐ इश्क तुझको कि अपना हौसला इतना न पाया, ऐ शम्मा तेरी उम्रे तवीय है, रात भर हंसकर गुजार या इसे रोकर गुजार दे, एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बला, किश्ती खुदा पे छोड़ दूँ लंगर को तोड़ दूँ, उल्फत का नशा, जब कोई मर जाए तो जाए, ऐ दर्दे सर ऐसा है कि सर जाए तो जाए। तुम भूल कर भी याद नहीं करते हो कभी, हम तो तुम्हारी याद में सब कुछ भुला चुके। इसी युग में नहीं बल्कि समस्त उर्दू साहित्य के इतिहास में सबसे महान व्यक्तित्व मिर्जा गालिब का माना जाता है। पद्य और गद्य दोनों में ही उनको महानता प्राप्त है। वे फारसी के भी उतने ही बड़े लेखक थे जितने बड़े उर्दू के। उनमें और उनके काव्य में मुगल सभ्यता की समस्त अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सिमट आई थीं, और वह उसका एक जीता जागता प्रतीक थे। जिस दृष्टि से भी देखा जाए, वह एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और एक महान लेखक थे। यही कारण है कि पुराने और नए सभी आलोचकों ने उन पर बहुत सी पुस्तकें और बहुत से निबंध लिखे हैं, और अपने ज्ञान और चेतना के दर्पण में उनका चित्र देखने की चेष्टा की है। गालिब का नाम ख्वाजा असद उल्लाह खां था, लेकिन अपने घर पर मिर्जा नौशाह के नाम से पुकारे जाते थे। उन्हें मुगल राज्य की ओर से नजमुद्दौला, दवी रुल मुल्क और निजाम जंग की उपाधि भी प्राप्त थी। उनका जन्म 1779 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अभी वह केवल 5 वर्ष के थे कि पिता परलोक सिधारे, जो महाराजा अलवर की सेना में उच्च पदाधिकारी थे। अब गालिब अपने चचा के पास चले गए, परंतु वह भी 4 वर्ष बाद मर गए, और गालिब अपने ननिहाल में रहने लगे। उनकी आरंभिक युवावस्था बड़े आनंद और विलास में बीती। अभी वह केवल 13 वर्ष के थे कि दिल्ली के एक बड़े कुल में उनका विवाह हो गया, जिसके लिए गालिब ने स्वयं लिखा है कि संसार के कारागार में आए अभी 13 वर्ष हुए थे कि पैरों में बेड़ी डाल दी गई। विवाह के बाद वह दिल्ली में रहने लगे। अपने फारसी और उर्दू पत्रों में उन्होंने अपने बालपन, पृष्ठ संख्या 110, आगरे के जीवन, विवाह, अपने कुल, अपनी शिक्षा इत्यादि का वर्णन बड़े रोचक शब्दों में किया है। गालिब ने कविता लिखना आगरे में ही प्रारंभ कर दिया था, जिसमें फारसी बहुत होती थी। उन्हें फारसी भाषा से हार्दिक लगाव था, और संयोगवश ऐसा हुआ कि ईरान का एक पारसी अब्दुस समद आगरे आया, और गालिब ने फारसी भाषा की शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। दिल्ली पहुंचकर उनको वहाँ के उच्च और शिक्षित वर्ग के लोगों में उठने बैठने का अवसर मिला। वे स्वयं तुर्किस्तान के सलकूज बादशाहों के वंश से संबंध रखते थे, और इस वंश परंपरा पर उन्हें अत्यंत गर्व भी था। उनका विचार था कि उनकी नस नस में बड़े बड़े सम्राटों और विजयी सैनिकों का रक्त दौड़ रहा है, इसलिए वह अपने आदर और सम्मान के प्रति केवल काव्य रचना को आधार नहीं बनाना चाहते थे, वरन यह भी प्रकट करते रहते थे कि किसी समय उनका संबंध उच्च वर्ग से रह चुका है। यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि उन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु उनके लेखों को पढ़कर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे उन समस्त विद्याओं से भली भांति परिचित थे जो कई शताब्दियों से मुसलमानों में प्रचलित थीं। इसलिए कुछ ही समय में उन्होंने दिल्ली के कवियों और विद्वानों में अपना स्थान बना लिया। दिल्ली में गालिब को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें आर्थिक संकट सर्वव्यापी था। उनके चचा को जो पेंशन मिलती थी, वह भी कई नातेदारों में बंट गई थी, और गालिब को उसका जो भाग मिलना चाहिए था, कई कारणों से वह भी नहीं मिल रहा था। इसके लिए गालिब को 30 वर्ष की आयु में कलकत्ता जाना पड़ा, और वहाँ लगभग 2 वर्ष रहकर उन्होंने अपना हक प्राप्त करने की कोशिश की। कलकत्ते की यात्रा उनके लिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उन्होंने लखनऊ, बनारस और कलकत्ते के कवियों और लेखकों का परिचय प्राप्त किया, वहाँ के साहित्यिक वाद विवाद में भाग लिया, और कलकत्ते के उस नए जीवन का अनुभव किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप पैदा हो रहा था। उस समय के सभी कवियों में केवल एक गालिब ही थे जो जीवन की इस नई धारा से परिचित थे। उसका प्रभाव उनके विचारों पर भी देखा जा सकता है। कलकत्ते में जो नवजागरण पैदा हो रहा था, उसको केवल उन्होंने देखा ही नहीं, समझने का प्रयास भी किया। पेंशन प्राप्ति की दृष्टि से उनकी यह यात्रा असफल रही, परंतु इस यात्रा के फलस्वरूप उन्हें सारे देश में फैली हुई साहित्यिक प्रवृत्तियों का अनुभव हो गया। 1850 ईस्वी के लगभग वह मुगल दरबार में इस काम के लिए नियुक्त किए गए कि मुगल वंश का एक इतिहास फारसी भाषा में लिखें। उनका एक भाग उन्होंने शुद्ध पृष्ठ संख्या 111 फारसी में लिख भी डाला, जो मेहरे निमरोज के नाम से उनके जीवन ही में प्रकाशित भी हो गया था। जब जौक की मृत्यु हो गई तो गालिब ही बहादुर शाह जफर के काव्य गुरु भी नियुक्त हुए, परंतु 2 वर्ष के अंदर ही वह विद्रोह हो गया, जिसको गदर कहा जाता है। गालिब के लिए जीवन फिर संकटों से भर गया। घर के अंदर बंद रहकर उन्होंने फारसी में अपनी एक डायरी भी लिखी, जिसमें उस घटना के बारे में बहुत सी बातें मालूम होती हैं। उस समय गालिब ने जो पत्र अपने शिष्यों और मित्रों को लिखे हैं, उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें भारत की उस दुर्दशा पर कितना दुख था। परंतु उनसे यह भी जान पड़ता है कि उन्हें सामंतवादी युग के मिटने का विश्वास था और मुगल राज्य के समाप्त होने का उनको बहुत दुख नहीं हुआ, जैसे उन्हें मालूम हो कि यह दीपक अवश्य ही बुझेगा। इसके पश्चात 1859 ईस्वी में उनका संबंध रामपुर के राज दरबार से हो गया, और वहाँ से उनकी मृत्यु के समय तक 100 रुपये महीने मिलते रहे, जिससे उन्हें आर्थिक रूप में कुछ राहत मिल गई थी। उनके शिष्य और मित्र भी सहायता करते रहते थे, और वह अपनी आवश्यकताओं को उनसे छिपाते भी नहीं थे। 73 वर्ष की आयु पाकर फरवरी 1869 ईस्वी में गालिब का स्वर्गवास हो गया। मिर्जा गालिब में कुछ विचित्र विशेषताएं ऐसी एकत्र हो गई थी जो बहुत कम लेखकों में मिलती हैं। उनकी बुद्धि की तीव्रता, बात में बात निकालने की शक्ति, उनका हास्यप्रिय स्वभाव, जीवन की कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति, विद्वता एवं पांडित्य, सहृदयता, आत्माभिमान और नम्रता, नई बातें स्वीकार करने की शक्ति, मित्रता का निर्वाह और प्रिय बन जाने का ढंग, ये सारी बातें ऐसी थीं जो उनके व्यक्तित्व को महान और लोकप्रिय बनाती थी। बादशाह से लेकर डाक के हर कार्य तक सब उनको भली भांति जानते थे। उनमें जो त्रुटियां थीं, वे उन पर पर्दा नहीं डालते थे। शराब पीते थे, धर्म के बाह्य संस्कारों की हंसी उड़ाते थे, परंतु मानव प्रेम से उनका हृदय भरा हुआ था। वे मानव के सूक्ष्म भावनाओं, उनके दुख सुख और उनकी आवश्यकताओं को समझते थे, और अपनी कविताओं में जीवन की जटिल समस्याओं को ऐसे सुंदर रूप में प्रस्तुत करते थे कि पढ़ने या सुनने वाला भी अपने मन की गूंज अनुभव करने लगता था। अपने देशवासियों के अतिरिक्त उनकी मैत्री अंग्रेजों से भी थी, और उनमें से अनेक व्यक्ति उनके शिष्य थे। उनकी दृष्टि में संकीर्णता नाम को भी न थी, और वह किसी जाति या धर्म के लोगों से भेदभाव नहीं बरतते थे। उनकी कविताएं ऐसे ही भावनाओं से भरी हुई हैं। गालिब की बहुत सी रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। इस दृष्टि से उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त है कि उनकी छोटी रचनाएं खोज खोज कर निकाली जा रही हैं, और उनके बारे में पुस्तकों पर पुस्तकें और निबंध पर निबंध लिखे जा रहे हैं। उर्दू में उनका काव्य संग्रह और पत्रों के कई संग्रहों के अतिरिक्त 2-3 छोटी छोटी पुस्तकें पृष्ठ संख्या 112 और मिलती हैं। फारसी में गद्य के कई संग्रह और कई पुस्तकें हैं। उन्होंने अपना पहला उर्दू काव्य संग्रह केवल 21 वर्ष की आयु में तैयार कर लिया था। यहाँ हम केवल उनको एक उर्दू कवि के रूप में देख रहे हैं, नहीं तो बड़े विस्तार में जाना पड़ेगा, जो इस पुस्तक के लिए उचित नहीं है। गालिब की उर्दू कविता कई शैलियों में मिलती है। प्रारंभिक जीवन में उन्हें फारसी भाषा की मिठास की ऐसी चाट पड़ गई थी कि उन्होंने उर्दू को भी फारसी ही के सांचे में ढाल दिया था। उस समय उनका विचार था कि उर्दू भाषा में इतनी शक्ति नहीं है कि वह जटिल दार्शनिक विचारों का वहन कर सकें। उन्होंने एक फारसी शेर में स्वयं कहा है कि यदि कोई मेरी कविता से आनंद उठाना चाहता है, तो वह मेरी फारसी कविताएं पढ़े। उर्दू काव्य तो निस्सार और नीरस है, लेकिन गालिब का यह विचार ठीक नहीं सिद्ध हुआ। जिस उत्साह से उनकी उर्दू रचनाएं पढ़ी जाती हैं, फारसी की नहीं पढ़ी जाती। उनका फारसी का यह प्रेम एक और रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने उर्दू में भी एक प्रसिद्ध फारसी कवि वेदिल का अनुकरण करने की चेष्टा की। उस समय उनकी कविताओं का बहुत थोड़ा सा भाग साधारण लोगों की समझ में आता था। 25 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपनी शैली में परिवर्तन किया। केवल कल्पनाओं से हटकर वे जीवन की उन समस्याओं की ओर आए जिनका उन्हें वास्तविक अनुभव था। बहुत थोड़े समय में उनकी काव्य रचना में कलात्मक दक्षता पैदा हो गई। उनकी उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं नई होती थीं। उनकी कल्पना शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे बेजोड़ वस्तुओं और अनमिल विषयों में भी समानता और संबंध ढूंढ लेते थे। जितना समय बीतता गया, उतना ही गालिब के काव्य में दार्शनिक गहराई और कलात्मक सुंदरता बढ़ती गई। इसमें संदेह नहीं कि वह सर से पांव तक सामंतवादी सभ्यता के रंग में डूबे हुए थे और उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब उनमें भी मौजूद थी। लेकिन उनकी आँखें तो खुली हुई थी और निरीक्षण शक्ति से काम लेकर वह जीवन से ऐसी सच्चाइयाँ ढूंढ निकालते थे जो दूसरों को नहीं देख पड़ती थी। बदलती हुई दुनिया को देखकर उन्हें यह विश्वास हो गया था कि यह समय बदल जाएगा, परंतु इतिहास का कोई दार्शनिक दृष्टिकोण न होने के कारण वे भविष्य निर्माण के बारे में कुछ नहीं बता सकते थे। वे स्वयं उस पतनशील सभ्यता के एक प्रतीक थे और अत्यंत सुंदरता रखने के बावजूद निराशा और भय की एक हल्की सी घटा उनकी कविताओं पर छाई हुई थी। उनकी रचनाओं में नैराश्य की भावना कम नहीं है, परंतु वे इस बात का प्रचार करते हैं कि जीवन में उसका सारा रस निचोड़ लेना चाहिए। जैसा कि कहा जा चुका है कि उनमें संकीर्णता नाम मात्र को भी न थी। धर्म का भेदभाव उनके विचारों में कोई महत्व नहीं रखता था। वह सहानुभूति और मानव प्रेम को सबसे बड़ा धर्म समझते थे। पृष्ठ संख्या 113। उनके यहाँ शैक और ब्राह्मण में कोई अंतर न था। उनका विचार था कि अपने अपने ढंग से सच्चाई का पथ खोजने वाले और विश्वासपूर्वक अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाले एक ही होते हैं, चाहे वह किसी धर्म से संबंध रखते हों। उनके मित्रों और शिष्यों में हिंदू और ईसाई भी थे, जिनसे उन्हें उतना ही प्रेम था जितना मुसलमानों से। मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि वह धर्म और सभ्यताओं की उन सीमाओं को तोड़ चुके थे जो किसी न किसी प्रकार से धार्मिक नैतिकता पर अवलंबित थीं। उनके इन विचारों को तशव्वुफ से आंतरिक संबंध रखने का परिणाम भी कह सकते हैं। गालिब की काव्य रचना में कल्पना और दर्शन का ऐसा सामंजस्य है कि उनके विचार जटिल और कठिन होते हुए भी हृदय पर तीर की तरह जाकर बैठ जाते हैं। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में अपनी राह अलग निकाली थी। इस दृष्टि से जैसे उनका जीवन एक प्रकार की विचित्रता रखता था, उसी प्रकार उनकी रचनाएं भी नवीनता से भरी हुई थी। उर्दू में उन्होंने कुछ कसीदे और अधिकतर गजलें लिखी हैं। उर्दू कसीदे ईरानी कवियों के लिखे हुए कसीदों के ढंग पर लिखे जाते थे और उनकी रीति में परिवर्तन अनुचित समझा जाता था, परंतु गालिब ने अपने कसीदों में नया रंग पैदा किया और गजलों में कई प्रकार के प्रयोग करने के बाद अपना मार्ग आप बना लिया, जो अनुपम है। उनका उर्दू दीवान काव्य संग्रह बहुत संक्षिप्त है, क्योंकि अपने मित्रों की सलाह से उसमें से वह कविताएं निकाल दीं जो फारसी निष्ठ होने के कारण बहुत कठिन हो गई थी। इस संग्रह के संबंध में एक आलोचक ने कहा है कि इसमें मुश्किल से 100 पन्ने होंगे, मगर क्या है जो इसमें विद्यमान नहीं है? कौन सा ऐसा राग है जो जीवन के इन तारों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में मौजूद नहीं है? उनकी विशेषताओं में वास्तविकता, शैली की सुंदरता, ताजगी, दार्शनिक गहराई, भावात्मक अनुभूति और नवीनता सब इस प्रकार से मिली जुली हैं कि कोई दूसरा कवि उनके बराबर नहीं लाया जा सकता। इस समय तक उन पर जो कुछ लिखा गया है उसमें से दो एक को छोड़कर सब उनकी प्रशंसा से भरा हुआ है, परंतु अभी तक बहुत कम आलोचकों ने उनको सामंतवादी सभ्यता के पतन का विश्लेषण करने वाले आलोचक कवि के रूप में प्रस्तुत किया है। जीवन को उल्लास और विलास के साथ व्यतीत करने की इच्छा उनमें प्रबल थी, परंतु वह युग उसमें बाधक था। इसलिए व्यक्तित्व और पतनशील समाज के संघर्ष के बड़े सुंदर चित्र उनकी रचनाओं में मिल जाते हैं। यह ठीक है कि उनकी कविता कोई दार्शनिक आदर्श नहीं प्रस्तुत करती, लेकिन जीवन की प्रबलता, महानता और सुंदरता के गीत गाकर जीवन से प्रेम करना अवश्य सिखाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो जीवन की गहराइयों को समझना और उसमें प्रवेश करना चाहता है, उसे गालिब की कविता में बहुत कुछ मिलेगा। उदाहरण के लिए उनके कुछ शेर दिए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 114। ये ना थी हमारी किस्मत जो विशाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। किससे महरूमी ऐ किस्मत की शिकायत कीजिए, हमने चाहा था कि मर जाएं सो वो भी ना हुआ। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नज़र लगे न कहीं उनके दस्तो बाजू को, ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर फरीसा हो गईं। रंज से हुगर हुआ इंसा तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। मिलना अगर नहीं तेरा आसा तो सहल है, दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। कैदे हयात व बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। पृष्ठ संख्या 115। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बताओ कि हम बतलाएं क्या। गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब को 19वीं शताब्दी के प्रतिनिधि शायर के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, यद्यपि दूसरे कवियों ने भी जीवन के उन दुखों का उल्लेख किया है जो एक मिटती हुई सभ्यता दान करती है, परंतु उनकी अनुभूति के स्तर और गालिब की कलात्मक अनुभूति में बड़ा अंतर है जो उनके समस्त काव्य में फैला हुआ है। महान मुगल वंश के अंतिम दिन आ चुके थे और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का राज्यकाल था। उस समय कुछ बड़े कवियों ने अपनी रचनाओं से यह सिद्ध कर दिया था कि एक पुरानी और उच्च कोटि की सभ्यता का दीप बुझते बुझते भी अपनी अंतिम प्रतिभा दिखा जाता है। बहादुर शाह का जीवन एक नाम मात्र बादशाह का जीवन था। बादशाहत की शान शौकत खोकर उन्होंने काव्य संसार में अपने लिए एक ऊंचा स्थान बना लिया था, और एक असफल बादशाह होते हुए भी वह एक सफल कवि बन गए। युवावस्था में ही उन्होंने कविता में नाम पैदा कर लिया था। बारी बारी से शाह नसीर, जौक, गालिब को उन्होंने उस्ताद बनाया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में राज्य से हाथ धोया और उन्होंने एक बंदी के रूप में अपने जीवन के अंतिम दिन रंगून में बिता दिए, और वहीं 1868 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। जफर के चार काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कहा जाता है कि पांचवा संग्रह गदर में नष्ट हो गया। कुछ आलोचकों का विचार है कि वह स्वयं कविताएं नहीं लिखते थे, बल्कि जोक उनके लिए लिख दिया करते थे, परंतु यह बात कुछ बहुत ठीक नहीं मालूम होती, क्योंकि उनकी कविताओं में दुख और करुणा की जो अनंत भावना पाई जाती है, वह उनके आत्मजीवन की कथा प्रतीत होती है। जफर बहुत जल्द कविताएं लिख लिया करते थे और कठिन से कठिन मात्रिक और वर्णिक छंदों में गतिपूर्ण रचनाएं कर सकते थे। उनकी विचारधारा वैसे तो पुरानी रीति पर ही चलती थी, पर जहाँ कहीं वह स्वयं अपनी व्यक्तिगत स्थिति का चित्रण करते हैं, वहाँ वही भावपूर्ण अभिव्यक्ति और सच्चाई पाई जाती है जो एक अच्छे कवि की विशेषता है। तसव्वुफ और नैतिक आदर्शों के अतिरिक्त श्रृंगार रस से भी उनके संग्रह भरे हुए हैं। पृष्ठ संख्या 116। उन्होंने कुछ धार्मिक कविताएं भी लिखी हैं, परंतु उनको जो कुछ मान प्राप्त है वह एक गजल के कवि होने के नाते ही है। जफर की भाषा दिल्ली की बोलचाल की शुद्ध भाषा थी। वह हिंदी शब्दों का प्रयोग बड़ी सुंदरता से करते थे और हिंदी में गीत और ठुमरियाँ संगीत कला के नियमानुसार रचते थे। उनकी कविता में उपदेश, संसार के त्याग की भावना और जीवन का तुच्छ होना भी मिलता है। यद्यपि वह प्रथम श्रेणी के कवि नहीं कहे जा सकते क्योंकि उनके यहाँ कोई नवीनता या दार्शनिक गहराई नहीं है, परंतु उनकी काव्य रचना का एक बड़ा भाग उनके जीवन का चित्र होने के कारण वास्तविक भावनाओं से भरा हुआ है। उनके कुछ शेर देखिए। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। पए फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई शम ला के जलाए क्यों, मैं तो बेकसी का मजारा हूँ। न जफर किसी का हबीब हूँ, न जफर किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। ठंडी ठंडी कोई सांस है आती जाती, दिल में है आग मेरे और लगाती जाती। इस युग में दिल्ली की मरती हुई आत्मा जाग उठी थी और असंख्य कवि शोकमय सुरों में अपने गीत गा रहे थे। इन कवियों की आवाज़ से समय की आवाज़ भी सुनी जा सकती है। मुगल राज जो एक प्रतीक के समान लोगों के मन में अपना स्थान बनाए हुए था वह भी मिट गया था, मगर जो कवि देश की बदलती हुई आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नहीं समझ सके थे अपना ही राग अलापे जा रहे थे। इस अध्याय में दिल्ली के केवल उन कवियों का उल्लेख हुआ है जो किसी न किसी दृष्टि से उर्दू साहित्य के अनमोल रत्नों में गिने जाते हैं और बड़ा ऊंचा स्थान रखते थे। ये कवि एक ओर से तो उन परंपराओं का पालन करते थे जो दिल्ली में लगभग 150 वर्षों से प्रचलित थी, दूसरी ओर उनमें एक विशेष प्रकार की नवीनता थी जो उनको प्राचीन कवियों से अलग करती थी। उनके हाथों में उर्दू भाषा मन कर शुद्ध, साफ और सुडौल हो गई थी। विषयों की व्यापकता बढ़ गई और गजल मोमिन और गालिब के हाथ में पहुँच कर व्यक्तिगत अनुभूतियों और हार्दिक संवेदनाओं का जीता जागता प्रतिबिंब बन गई थी। दिल्ली के यह कवि थोड़ा बहुत लखनऊ की भाषा संबंधी क्रांति से प्रभावित हुए थे और जो आलोचक भी दोनों स्थानों के समकालीन कवियों का एक साथ अध्ययन करेंगे, पृष्ठ संख्या 117, उसे इस प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन न होगा। सारांश यह कि दिल्ली में सौदा, दर्द और मीर ने जो दीप जलाया था उसे इस युग के कवियों ने और दिव्य कर दिया। विशेषकर गालिब ने जीवन की बुझती हुई राख को कुरेद कर ऐसी चिंगारियां निकाली जिनमें ज्वालामुखी की गर्मी और प्रकाश देखा जा सकता है। उनकी मधुर रागों में एक ऐसी करुणा का अनुभव होता है जो एक नाश होती हुई संस्कृति ही प्रदान कर सकती थी।